क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण मन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांतिकायः पर्व आया।
ओम शांति। माँ के गर्भ में दो बच्चे थे और वो दोनों बच्चे आपस में बात करने लगे। पहला बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है, क्या इस गर्भ से बाहर निकलने के बाद में भी कोई जीवन है, लाइफ आफ्टर डिलीवरी? दूसरा कहता है, ऐसा कोई जीवन नहीं होता, यही अंतिम है, इसके बाद कुछ भी नहीं। परंतु पहला कहता है, मुझे लगता है यहां से निकलने के बाद कोई जीवन है, जहां पर यहां से ज्यादा प्रकाश होगा, यहां तो अंधेरा है। वो कहता है कि शायद हो सकता है हम चल पाएंगे, हम उठ पाएंगे, हम खा पाएंगे यहां से बाहर जाने के बाद। गर्भ में दूसरा बच्चा है, वो कहता है हो ही नहीं सकता, हम कैसे चल पाएंगे, कैसे खा पाएंगे, अभी तो हमें हमारा सारा पोषण माँ से, वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उस कॉर्ड से मिल रहा है। पहला कहता है ना, हो सकता है हम शायद चल पाएंगे, उठ पाएंगे, खा पाएंगे, और हमें इस कॉर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसने हमें बांध रखा है। पहला कहता है, दूसरा कि मुझे लगता है कि कोई तो होगा जो हमारा ध्यान रखे, शायद हमारी माँ होगी। पहला कहता है, माँ? कौन माँ, कैसी माँ, कहाँ है माँ, है तो नहीं कहीं, अगर है तो अब कहाँ है? दूसरा कहता है, हम जहाँ हैं और जिसमें है और हमारे इर्द गिर्द जो है वही माँ है। पहला कहता है मैं नहीं मानता, दूसरा कहता है शांति से बैठो एकांत में, आंखें बंद करके ध्यान लगाओ तो तुम्हें महसूस होगा कि जिसमें हम हैं और जिसके अंदर हम हैं और हमारे आसपास जो है और जिसमें हम हैं वो सब वही है माँ। परंतु उसके लिए क्या चाहिए? साइलेंस। उस साइलेंस में सुनो तो तुमको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। वो दिखाई नहीं देती है परंतु उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वही है। आज क्या है? 8 तारीख, 8 मई, मदर्स डे। जिसमें हम हैं, जिससे हम पल रहे हैं और हमारे आसपास और इर्द गिर्द ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं और आगे और पीछे जो है और जिससे हमारा पोषण हो रहा है वो माँ है। कहाँ है मुझे दिखाओ, कैसे देखोगे? तुम उसी के अंदर हो, उसके गर्भ के अंदर। तो ब्रह्मा का भी कर्तव्य कौन सा था? माँ का, जिसके गर्भ में ये सारा यज्ञ था, यज्ञ रूपी बच्चा। बाबा के बहुत सारे बच्चे थे, एक ये भी बच्चा है, एक टेप रिकॉर्डर, एक रेडियो, एक चिड़िया, सांप, माली, माली था, माली बच्चे उसको कहते थे बाबा। मिस्त्री जो थे राज गलबा जी, उसको भी बाबा क्या कहते थे? बच्चा बच्चा कहते थे। और जो चिड़िया थी उसको भी बच्ची कहते थे। और बाबा जब चले गए, उसके अगले दिन वो आई जैसे ढूंढ रही है कहाँ है वो, 2-3 दिन आती रही। और वो जो माली था वो अपना अनुभव सुनाता है कि जब कुटिया में बाबा बैठते थे और ग्रुप से मिलते थे और लोग अपनी समस्याएं सुनाते थे तो मैं आसपास वहीं काम करते रहता था। पर बाबा को मुझ पर इतना विश्वास था कि मुझे कभी नहीं कहा तुम जाओ। मैं सारी बातें सुनता भी था, प्राइवेट बातें चलती थी कुटिया में, पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो मुझे कभी कहा ही नहीं। बाबा कहते थे अपने घर का बच्चा है। तो वो माली, वो मिस्त्री गलबा जी, वो चिड़िया, ये सब बच्चे थे। तो ये ब्रह्मा के गर्भ में ये यज्ञ भी जैसे क्या है? एक बच्चा जिसकी ब्रह्मा माँ ने पालना की। तो हम वापस यज्ञ इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। कई दिनों से हम रुके हुए हैं, अलग अलग किस्से, अलग अलग कहानियाँ, और जो इतिहास वाली चीज़ जो थी वो रुक गई थी। तो 100 किस्से और फिर ब्रह्मा का महाप्रयाण और वो आए हुए 13 मैसेजेस 13 दिन के और 21 जनवरी की मुरली, ये सब हमने देखा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 1969 जनवरी से लेकर तो 1980 तक हमने इस यज्ञ को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। पहला बताया था फाउंडेशन 36 से लेकर तो 50 तक, 51 से 59 तक ट्रांजिशन फेज, 60 से 69 तक कंसोलिडेशन फेज जहां मजबूत हुआ गया यज्ञ, और उसके बाद में 1970 से लेकर तो 2007 तक एक्सपांशन ईयर विस्तार हुआ, जो कल भी सुनाया था। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो भारत में 125 सेंटर थे और जब दादी प्रकाशमणि ने शरीर छोड़ा तब 120 देशों में सेंटर्स थे। अगले 7 दिन हम इन 11 साल के बीच में रहेंगे, इन 11 साल के बीच में 69 से लेकर तो 80, इस बीच में कम से कम 7 से 8 घटनाएं हुई है, बड़ी बड़ी घटनाएं। तो एक एक करके इन घटनाओं की हम चर्चा करेंगे टाइमलाइन के साथ। टाइमलाइन बहुत जरूरी है, कब कब क्या क्या हुआ। कुछ कुछ बातें इधर उधर होगी पर उसको फिर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगले 7 दिन हम कहाँ रुकेंगे, 69 से लेके तो 1980 तक। 69, 18 जनवरी, उसके पहले ही वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट फॉर्म हो चुका था। बाबा ने रमेश भाई को बुलाया था और एक ट्रस्ट बना था। दीदी, दादी, आनंद किशोर दादा और रमेश भाई, ये 4 लोग थे उसमें, और मैनेजिंग ट्रस्टी थे रमेश भाई। तो ये एक ट्रस्ट तो बन चुका था, क्योंकि ट्रस्ट चाहिए था कुछ, अगर ज़मीन लेनी है या और कुछ करना है। और एक रमेश भाई ने अनुभव सुनाया है कि दादी को बाबा ने मुख्य प्रशासिका कब नियुक्त किया। साकार मुरली थी अप्रैल की, कब? साकार मुरली अप्रैल, 1 अप्रैल 1966, मुरली का लास्ट पेज, जिसमें बाबा ने एक पत्र लिखा कि, और बताया कि मम्मा चली गई है 65 में, नाउ हु विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो ये जो साकार मुरली है 1 अप्रैल 66 की, बाबा जब है, रमेश भाई ने लिखा है कि इसी टाइम पे बाबा ने एक पत्र निकाला था नियुक्ति का, कि जिसमें लिखा था कि दादी प्रकाशमणि, उस समय मुंबई थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दीदी, ये दोनों। ये जाने से इसका और कहीं वर्णन मिलता नहीं है, और वो कौन सी मुरली है और जिसके लास्ट पेज में आया है ये पता नहीं, बट डेट ये है 66, और जो एडमिनिस्ट्रेशन दादी का चला 2007 तक। तो ऐसी 7 से 8 घटनाएं हुई इस स्पीच में। सबसे पहली घटना, टू वुमेन लीडरशिप 69 के बाद। यज्ञ में जो मेजर परिवर्तन आया वो कौन सा परिवर्तन था, कि 2 लीडर्स, दादी और दीदी, जो मुरली में भी आया। कुछ विदेश के लेखक ने ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पार्शियल भाव से अध्ययन किया है, और उन्होंने ऐसा लिखा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही आफ्टर द डेथ ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो दिनचर्या ब्रह्मा था तब जो बनी थी, वो ब्रह्मा जाने के बाद भी सेम चालू रही, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की रीति से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। वही क्लास, वही मेडिटेशन, स्पिरिचुअल क्लासेस, सेवा, ये सब जारी था। तो 69 के बाद का जो यज्ञ है उसमें मेन रोल किसका है, दीदी का और दादी का, इन दोनों का, जो कल भी सुनाया। पहले 1 साल तक सब लोग क्या कहते रहते थे कि बाबा थे तो ऐसा होता था, मम्मा थी तो ऐसा करती थी, मम्मा हमको ऐसा पालना देती थी, और 1 साल होते होते फिर सबने क्या कहने लगे सब लोग, कि नहीं नहीं ये दोनों दीदी दादी मम्मा बाबा जैसी पालना देते हैं। तो ये एक मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज हुआ यज्ञ में, फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज, हम ऐसे 8 चेंजेस देखेंगे। सेकंड चेंज, गुलजार दादी, नया रथ। अभी तक शिव बाबा किस में आ रहे हैं, ब्रह्मा तन में। सबके मन में ये प्रश्न था कि ब्रह्मा चला गया है, अब क्या होगा। शीलेंद्र दादी के तन में आए, संतरी दादी के तन में आए, गुलजार दादी के तन में आए, परंतु फिर गुलजार दादी अपना अनुभव सुनाती है, मुझे भी पता नहीं था क्या होने वाला है, क्योंकि गुलजार दादी को अब तक के जो साक्षात्कार थे वो 2 प्रकार के साक्षात्कार थे। अधिकतर जो बचपन से 8 साल की उम्र में जो साक्षात्कार हुआ वो श्री कृष्ण का, और उसके बाद के जो सारे साक्षात्कार थे वो सतयुग रिलेटेड साक्षात्कार थे। और अचानक एक दिन जब बाबा ने 8 दिन की मौन भट्टी रखी थी स्ट्रिक्ट, जो हमने देखा, उसमें एक दिन दादी ध्यान में चली गई और पहली बार सूक्ष्म वतन का दर्शन, और वहां पर अव्यक्त ब्रह्मा दिखा, जो दादी ने नीचे आके बताया फिर। तो तो बाबा ने पूछा क्या है वो, कौन था वो? फर्स्ट टाइम यज्ञ इतिहास में अव्यक्त ब्रह्मा का पाठ जैसे खुला पता चला, ये सेकंड। और थर्ड ये पार्ट था कि अचानक बाबा की, शिव बाबा की प्रवेशता हुई और दादी एक नया माध्यम, साकार माध्यम। दादी रहती थी दिल्ली, परंतु जैसे ही सुप्रीम पर्सनालिटी उनके शरीर में प्रवेश करती थी, 8 घंटा 10 घंटा सब कुछ बदल जाता था, आवाज़ चेंज, सब कुछ चेंज। तो मेजर जो शिफ्ट हुआ वो एक नया रथ, गुलजार दादी। तीसरा, बाप दादा, ये तीसरा चेंज था 69 के बाद। अब तक कौन आता था? शिव बाबा आते थे ब्रह्मा में, परंतु अभी ब्रह्मा अव्यक्त हुए। पर इसको लोगों ने तीन रीति से लिया, तीन ग्रुप बने। पहले वो जिन्होंने कहा कि हमें ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, हमको डायरेक्ट भगवान चाहिए और सीधा भगवान को हम मानते हैं, ये ऑलमाइटी जो परमात्मा है वो किसी के भी तन में आए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमारा लेना देना किससे है? परमात्मा से। ग्रुप नंबर टू, उनका कहना था कि ब्रह्मा जो है एक्सेप्टेड बट केवल मीडियम, उससे ज़्यादा नहीं, एक चैनल है बस, इससे ऊपर कुछ नहीं, उसके अंदर वो आता है, वो एक चैनल है, वो एक मीडियम है। तीसरा, कंबाइंड बाप दादा का रिमेम्बरेंस। अब बाप अलग नहीं है ब्रह्मा से, बाप और दादा एक हो गए। थ्री ग्रुप्स, पहला केवल मीडियम मानने वाले, दूसरा पहला बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन, इस पर फिर ढेर सारी साकार मुरलियां भी है और तो ये तीन, इसके वजह से मुरलियां दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई, फिर एक साकार मुरलियां और एक अव्यक्त मुरलियां। साकार मुरलियां 64 65 66 67 68, इसका 5 ईयर रोटेशन चालू हो गया। अभी जो वर्तमान रोटेशन चालू है वो है 11वां रोटेशन जो अभी चल रहा है, 11th रोटेशन। तो 5 ईयर रोटा यहाँ से चालू हुआ, जिसको कहा गया साकार मुरली, और जो गुलजार दादी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा के द्वारा चलाया गया उसको हम कहने लगे अव्यक्त मुरली। तो सेंटरों पर फिर एक दिन अव्यक्त मुरली और बाकी दिन साकार मुरली, चेंजेस आने लगे। अभी भी इलेक्ट्रॉनिक मुरलियाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुई, इलेक्ट्रॉनिक मुरलियाँ 90s में आएगी। और जो कहा ब्रह्मा कुमारी इसका विरोध, वो अभी भी चालू है, वो चालू है मिड 80s तक भी लोगों के मन में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, बंद करना, ये सब चालू है। तो वो अभी भी 80s तक विरोध चालू ही है। तो ये थर्ड शिफ्ट जो हुआ बाप दादा का, तो पहला बताया दीदी दादी विमेन लीडरशिप, फर्स्ट। सेकंड, गुलजार दादी, नया रथ एक चुना गया। थर्ड, बाप दादा। फोर्थ, भारत में सेवाओं का विस्तार, भारत में सेवाओं का विस्तार 69 में। और एक बात, मई 69 फर्स्ट कुमारी भट्टी, मधुबन में सबसे पहली कुमारी भट्टी हुई, जो हमने देखा जनवरी 69 में ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, नीचे का बन गया था, ऊपर छत अभी डालना बाकी था। तो मई 69 में फर्स्ट कुमारी भट्टी हुई। इसमें बहुत सारे जो वरिष्ठ बहनें जो इसमें थे, आशा बहन, शिलू बहन, मुन्नी दीदी, ये सारे, शशि बहन, चंद्रिका बहन, बहुत सारे लोग इस भट्टी में थे। ये फर्स्ट कुमारी भट्टी थी मई 1969। विदेश की सेवा का हम बाद में देखेंगे, पर थोड़ी एक पूरा दिन उसके लिए डिवोट करना पड़ेगा। कैसे चालू हुआ, जादी जानकी का अराइवल इन लंदन 24 जून 1974, पर उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हुई है, वो बहुत पहले, उस पेपर हम आएंगे, पर अभी पहले भारत। तो तो भारत में 72, 73, 74, 75 इस बीच अब एक नई श्रृंखला चालू हुई। किस बात की? वर्कशॉप, सेमिनार, स्पिरिचुअल फेयर, म्यूजियम, ये सब चालू हो गया। तो इसमें मुख्य रूप से कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, मैसूर, दिल्ली स्पिरिचुअल फेयर ऑर्गेनाइज हुए। दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, मैसूर में, इन जगह पर। कहाँ से कहाँ तक? 72 से 75 तक। उसके बाद में और आगे 76 से 80 तक कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसके अलग अलग टॉपिक थे। डिवाइनाइजिंग द मैन, इवोल्यूशन, अलग अलग इंग्लिश टॉपिक्स जिस पर कॉन्फ्रेंसेस हुई, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस हुई ऑल ओवर इंडिया। ये केवल हम इंडिया की बात कर रहे हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंसेस थी, अब तक जो सेवा हो रही थी 69 से पहले, उसका लक्ष्य और उसका स्कोप थोड़ा छोटा था। अब जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है और इनका जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। तो ये सारी सेवाएं भारत में चालू हुई उस समय, एक एक करके धीरे धीरे फैलता गया। तो भारत में सेवाओं का विस्तार चालू हुआ इसी पीरियड में, 72 से 73, 74, 76 और फिर 76 से 80 तक विस्तार चालू हुआ। और एक चीज़, ये तो हो गया भारत का, और एक चीज़ जिसके लिए हम एक स्पेशल एक दिन देंगे, वो है म्यूज़ियम। यहाँ का जो म्यूज़ियम है उसका, एक तो वो म्यूज़ियम और एक चीज़ जो हम आगे देखेंगे, 1976 क्या था ये? विनाश की डेट। तो क्यों, कैसे, थोड़ा हम पहले भी देख चुके हैं जयंती बहन का एक एक्सप्लेनेशन कि ये डेट कहाँ से निकली, परंतु इससे रिलेटेड ढेर सारी मुरलियाँ भी है। वो राजौरी गार्डन की स्टोरी हमने देखी थी, फिर और विस्तार से इसको देखेंगे। 76 में जो विनाश 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 हुआ वो क्या था, कैसे था और क्यों था। और एक चीज़ इसी ईयर में हुई, वो कौन सी? सेम ईयर 76, 76 एक भाई जो ज्ञान में 69 में आया था, वीरेंद्र देव दीक्षित, 76 में। पहले वो यहाँ था अहमदाबाद, बाबू आया, फिर दिल्ली गया, फिर कंपिल में एक नई संस्था की स्थापना की, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय या एडवांस पार्टी, जिसको हम लोग कहते हैं शंकर पार्टी। तो ये जो फिलॉसफी है ये क्या है और कैसे डिफरेंट है और क्यों आई? स्प्लिंटर ग्रुप्स कहते हैं इनको, स्प्लिंटर ग्रुप्स। तो ये इसका ईयर कौन सी है? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, उसको उन्होंने नाम दिया एडवांस पार्टी। अर्थात ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है वो बेसिक है और हमारा जो है वो एडवांस है। 76, इसको देखेंगे हम आगे फ्यूचर में। उसके बाद में और एक चीज़ हुई इसी पीरियड में, 69 से 70, विदेश सेवा का विस्तार, विदेश सेवा का की शुरुआत। अब तक 69 तक कोई विदेश सेवा नहीं है, 69 के बाद। वैसे तो 57 में ही वो चालू हो गए थे, उसका बीज। कैसे? मुरली दादा और रजनी बहन, रजनी माता, ये शिफ्ट हो गए थे लंदन जयंती बहन के साथ 57 में। पर एक्चुअली जो चालू हुआ सारा विदेश का वो 70s के आसपास। तो ये सारी घटनाएं कब कब हो रही है? 69 और 80 के बीच में। तो 1970s में स्लफ यूके में निर्मला बख्शी और सुमन बख्शी, ये जो दो लोग थे, उनके घर में ही सेंटर जैसा चालू हुआ। उसको सेंटर नहीं नाम दिया जा सकता है, बट फर्स्ट ओवरसीज। और एक शिव कुमार भाई था, उसने तभी से मेडिटेशन थोड़ा सिखाना चालू किया था। बट रियल जो चालू हुआ वो यहाँ से 1971, 5 लोगों का डेलीगेशन गया। कौन कौन? जगदीश भाई, रमेश भाई, डॉक्टर निर्मला, रोजी बहन और शीलेंद्र दादी, ये पांच लोग सबसे पहले पहुंचे लंदन। किसके घर में रुके? जयंती बहन के घर में रुके थे। तो यहाँ कुछ समय थे और यहाँ पर जो स्लफ एरिया है ये यूके का स्लफ, तो वहाँ रुके और फिर वहाँ से वो लोग आगे निकल गए अमेरिका के लिए। पर पीछे किसको छोड़ दिया? डॉक्टर निर्मला को। और निर्मला दीदी वहाँ एक साल से कम समय तक थी, फॉलोड बाय रतनमुनि दादी। ये बात चल रही है कहाँ की? 71 की। और फिर अक्टूबर 71 में टेनिसन रोड, वहाँ पे एक सेंटर खुला जहाँ निर्मला दीदी थे। और एक्चुअल जो रियल चालू हुआ वो चालू हुआ 24 अप्रैल 74, दादी जान की अराइव्स इन लंदन। तो दादी जान की वहाँ आई और जो पहले का ओरिजिनल रेंटेड फ्लैट था उसी के बाजू में एक दूसरा लिया गया ये। और विदेश में सबसे पहले जो ज्ञान में आए वो दो लोग थे, फर्स्ट वेस्टर्नर बीकेस, कौन कौन? डेनिस बेन और दूसरा एक भाई जिसका नाम था जॉन कीन, उसने बाद में ज्ञान छोड़ दिया। नहीं तो विदेश में ये पहले दो लोग हैं जो फर्स्ट वेस्टर्नर बीकेस, डेनिस बेन और जॉन कीन। जॉन कीन ने बाद में ज्ञान छोड़ दिया और फॉलोड बाय और तीन लोग मुख्य हैं वहाँ पर, क्योंकि अभी विश्व भर में कहीं सेवा नहीं हो रही है। सेवा की शुरुआत कहाँ से हो रही है? लंदन मुख्य केंद्र बन रहा है। यहाँ पे तीन भाई और, चार्ली, केन और बलवंत भाई। तो टेनिसन रोड पर यह हुआ। और उसके बाद में एक दूसरा 74 में ये दोनों, ये डेनिस बेन और केन। फिर जून 75 में बीके जो वहाँ का है, वहाँ का लीगल रजिस्ट्रेशन नाम हुआ वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट, जो भारत में नाम था वही नाम उधर भी। और 77 में फर्स्ट मेजर इवेंट हुआ लंदन में जिसका नाम था वर्ल्ड रिन्यूअल फेस्टिवल, जिसमें दादी प्रकाशमणि पहली बार विदेश यात्रा में गई 1977। और वहाँ से फिर दादी कहाँ गई? यूएस, यूके से होते हुए यूएस। 78 में एक दूसरी जगह सेंट गैब्रियल रोड पर खरीदी गई जो कि लंदन का दूसरा मेन सेंटर बना। जो टेनिसन रोड का सेंटर था उसको रिटेन किया गया, परंतु ये मेन सेंटर बना दूसरा। 75 में ऑस्ट्रेलिया में सेवा चालू हुई। तो पहला सेंटर कहाँ खुला विश्व में? लंदन 74, दूसरा सेंटर ऑस्ट्रेलिया 75। 77 में फिर सेवा चालू हुई अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट अमेरिका। दादी ने यूएन देखा और दादी का ये संकल्प था कि यहाँ पर भी हमारा झंडा लहराएगा, और वो झंडा वो साकार हुआ स्वप्न 1980s। तो फर्स्ट सेंटर यूएस में कब खुला? 77। इसका हम देखेंगे आगे विस्तार, आज थोड़ी झलक देख रहे बस। 1980s में बीके का एफिलिएशन हुआ एनजीओ विथ यूएन, उसका डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन DPI उसके साथ। ये 80s, यहाँ पे हम रुकते हैं आज। तो टोटल इतनी घटनाएं हैं, सबसे पहली टू लीडर्स, दूसरा गुलजार दादी, तीसरा बाप दादा, चौथा म्यूजियम, म्यूजियम की अपनी एक स्टोरी है, पांचवा भारत में सेवाओं का विस्तार चालू हुआ, अगला विदेश में सेवाओं का विस्तार 70s के आसपास सारा चालू हुआ, उसके बाद में 76 में विनाश, क्यों कैसे क्या कब। और 76 में ही ये एक नया स्प्लिंटर ग्रुप चालू हुआ, नया एक ग्रुप एडवांस पार्टी, वो जो बाबा का पार्टनर था सेवकराम, जिसने 44 में शरीर छोड़ दिया। इनका कहना है कि उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि ये उसी की आत्मा है सेवकराम की। सेवकराम ने जो शरीर छोड़ा, मिस्टीरियस डेथ, क्यों कैसे छोड़ा किसी को पता नहीं, तो वो सेवकराम रिबॉर्न एज वीरेंद्र दीक्षित, जिसको ज्ञान मिला गुजरात अहमदाबाद में, फिर वो यहाँ आया। ढेर सारे प्रश्न थे, बहुत फिलोसॉफिकल माइंड। और फिर उसने कहा कि जो शिव बाबा ब्रह्मा में आता था, ब्रह्मा का पार्ट पूरा हुआ, अब शिव बाबा मुझ में आता है। एक ही डिफरेंस है फिलॉसफी में। ये जो तुम कहते हो कि दादी गुलजार में आता है, वो नहीं है। किस में आता है? मुझ में। ब्रह्मा का पार्ट पूरा हुआ, शंकर का पार्ट चालू हुआ। वो माँ थी, मैं पिता हूं। और यहां से उनके पास कौन लोग गए, उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा शब्द है जाने वालों का, डिसएंचेंटेड ड्रॉपआउट्स। जो यहां खुश नहीं है, असंतुष्ट है, ड्रॉप आउट है, जो समझते हमारे साथ अन्याय हुआ है, ड्रॉप आउट्स, कुछ मिला नहीं जो चाहिए था, फिर वो लोग वहां पहुंचे और देखा जो ब्रह्मा तन में, ये वो लोग पहुंचे जिन्होंने साकार की पालना वगैरह ली थी और गुलजार दादी के द्वारा बाबा को देखा था, वही सेम अनुभव, सेम बाप दादा की आवाज, सेम सब कुछ, सेम वैसा ही ज्ञान जैसे यहां, सेम वैसा वहां। इसीलिए कई सारे वहां पर चालू हो गए। वो पहले दिल्ली गया, फिर दिल्ली से वहां पर स्थित हो गया, और फिर मुरलिया का नया इंटरप्रिटेशन। मुरलिया यही पर, बस एक ही प्रश्न है उनके लिए, मुरलिया यही पर, इंटरप्रिटेशन अलग। अगर भगवान तुम्हारे तन में आता है, ठीक है, मुरलिया की तरह, वो है ही नहीं उनके पास, ओरिजिनलिटी कुछ नहीं, यही मुरलिया लेके उसका अपने रीति से इंटरप्रेट करना। परंतु इसके बावजूद भी इधर से बहुत सारे उधर पहुंच गए, खाली हो गए, अभी भी है, चल रहे है। और उनका एक ही लक्ष्य है जीवन का, सहन करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, पर बीके का कल्याण करके रखेंगे। भगवान के महावाक्य अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे, माया का अंतिम रूप होगा भगवान, माया का अंतिम रूप होगा भगवान। तो ये एक स्प्लिट ग्रुप, और ऐसे बहुत सारे निकल पड़े बाद में, तो ढेर सारे, एक के बाद 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 एक के बाद, और वही सेम ऐसा लगता है, वही है। कितनी घटनाएं हो गई? 8। एक बात जो इम्पार्शियल रूप से स्टडी की गई बी केस की, उसमें वो लोग कहते थे ये लोग पहले हाईली रेक्ल्यूसिव सेक्ट था, मतलब रेक्ल्यूसिव अर्थात सन्यासी जैसे क्लोज्ड, अंदर ही अंदर रहने वाले। अचानक इन्होंने नया रूप कहां से धारण कर लिया? पहले विनाश की चर्चा करते थे और अभी सीधा सेवा की चर्चा करने लगे। एग्रेसिवली प्रोजिलिटाइजिंग मूवमेंट बन गया वो। प्रोजिलिटाइज अर्थात धर्मांतरण करना या धर्म परिवर्तन करना, ये क्रिश्चियन शब्द है प्रोजिलिटाइज। उसमें जो क्रिश्चियन लोग आते थे ना मिशनरीज, तो ये लोगों का कहना है, कुछ लोगों का, ब्रह्मा कुमारीज जो साक्षी होकर इसको स्टडी करते हैं बिना कोई वो बीकेज नहीं है, इस तरह से स्टडी करते, वो कहते हैं ये मूवमेंट पहले हाईली रेक्ल्यूसिव, रेक्ल्यूसिव अर्थात सन्यासी, मतलब क्लोज रहते हैं, ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं रखते। अचानक ये लोग क्या बन गए फिर? सेवा 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 सेवा, पकड़ पकड़ के अचानक सारे विश्व भर में सेवा 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 सेवा। फिर वो जो विनाश वाली जो चर्चा थी धीरे धीरे कम होती गई, विनाश वाली चर्चा धीरे धीरे कम 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 होती गई, और ज़्यादा सेवा किसकी चलने लगी? ये सब आगे हम और देखेंगे, जो विश्व के जो टॉपिक है वो उसमें आने लगे, फिर वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड फेयर फेस्टिवल, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, वो हम कल आगे देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें इसमें चालू हो गई, पहले ये सब चीज़ें नहीं, पहले ये लोग बात किसकी करते थे? आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। बीकेएस को क्या कहा जाता है गाँव में? जैसे चार्ट, वो प्रदर्शनी का सेट लेके प्रवेश करते हैं, ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले, ये आ गए ओम 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 शांति वाले, हाँ ये विनाश वाले आ गए। तो गांव में ऐसे बात करते। और एक चीज जो कोई घर घर में गीता पाठशालाएं चालू हुई, एक जो चेंज जो यहाँ हुआ वो कौन सा हुआ? जो सेंटर से जो बहुत दूर थे भाई बहने, उन्होंने फिर क्या कर दिया? अपने ही घर में गीता पाठशालाएं चालू कर दी, और दादी का एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, और दादी को हर दिन नई प्रेरणा है, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, ये हो जाना चाहिए, दादी को ये प्रेरणा आ गई, दादी बाबा के कमरे में गई मतलब अब कुछ तो होने वाला है। रोज एक नई प्रेरणा, और उस नई प्रेरणाओं ने ये एक्सपांशन पीरियड है 69 से बहुत 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 एक्सपांशन यहाँ से चालू हो गया। और जो पहले मम्मा बाबा यहाँ पर पहले उनकी पालना अभी किसकी हो गई, दीदी दादी की पालना, दीदी दादी की पालना एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एक बात। उसके बाद में कुछ सिस्टम्स जो पहले से थी उसको और थोड़ा रिफाइंड हो गया, जैसे भोग, जैसे मुरली, पहले मुरली 15-15 पेजेस की थी, फिर ये जो आया एडिटेड मीठे बच्चे, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, फिर एक गीत, फिर मुरली, फिर धारणा के लिए सार, और फिर वरदान, और फिर स्लोगन, ये रूप उसका हुआ यही पीरियड में, प्रॉपर फॉर्मेट। दूसरी एक चीज, हाँ पहले बीच में वो हमेशा नहीं आता था, वो कुछ समय फरमान आने लगा, पर वो इतने भयंकर थे सारे फरमान कि एक महीने के अंदर बंद करने पड़े। वो बंद करने पड़े। और विदेश में, जब विदेश में कुछ भी सेवा नहीं थी, पर परंतु विदेश का वो समय था कि जहाँ पर भारत के लोग विदेश जाना चालू हो गए थे, शुरुआत हुई थी विवेकानंद 1893 फर्स्ट, योगानंद 1902 1920 महेश योगी, अब विदेश इनके प्रभाव में था, मतलब दादी जानकी ने जब कदम रखा विदेश में, भारत का या भारत की जो फिलॉसफी का काफ़ी विस्तार वहाँ हो चुका था, मेडिटेशन या तो चैंटिंग, उसी पीरियड में कल हमने नकी पर देखा एस्कॉन वाले आ गए, 7-8 लोग आए हैं रशिया से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो प्रभुपाद स्वामी 65 अमेरिका पहुँचे, और फिर वो चैंटिंग चालू हुआ हरे कृष्णा, और धीरे धीरे यूरोप में भी फैला वो, तो ये सारे लोग एक एक करके वहाँ जाने लगे, तो उनके अंदर भारत के मिस्टिसिज्म, भारत के बारे में, रिलीजन के बारे में इंटरेस्ट पहले से ही जाग गया है, तभी से, जो फर्स्ट व्यक्ति विवेकानंद जाने के बाद, फिर शिवानंद, फिर रजनीश, ये सारे लोग भारत से वहाँ जाने लगे, और इनके प्रभाव में लोग इतने आने लगे कि वो सारे विदेश का कुछ सन्यासी बन गए, उनका अपना कल्चर छोड़ के इनके पीछे, और ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों के बीच में एक अनएजुकेटेड जिसको इंग्लिश भी नहीं पता, वो लेडी पहुँचती है लंदन, जबकि इतने हाई फाई लोग ये सारे, ये सब प्रोलिफिक स्पीकर्स है, ये उनकी भाषा में एकदम पावर है, लोगों को अपनी तरफ खींच लिया ये लोगों ने, कितने फॉलोअर्स बन गए, जब बीटल्स जो था उसने जब टीएम मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, ट्रांसडेंटल मूवमेंट, ये मेडिटेशन महेश योगी का, वो उसके पूरा अमेरिका उसके फॉलोअर बन गया, बीच में हिप्पी मूवमेंट आया, एक 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 मूवमेंट आते गए ये सारे, तो इनके प्रभाव में विदेश था, पर वहाँ पर दादी जानकी की प्रवेशता हुई, दादी जानकी की प्रवेशता अर्थात भगवान अपना संदेश लेकर वहाँ पहुँचा, और वो सेवा कितनी स्लो स्लो होती गई होती गई होती गई होती गई, पर कहाँ पहुँच गई, अमेरिका से लंदन से ऑस्ट्रेलिया 75, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका 77, और फिर धीरे 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 अफ्रीका, और धीरे धीरे विस्तार होने लगा। कुछ बातें आज हमने देखी है, कल ये आज का पूरा ओवरव्यू था, कल एक एक के डिटेल में जाएंगे, ठीक है, इतिहास की सीरीज चालू है। और एक बात, अभी हमारे भट्टी के 21 दिन बाकी है बस आज से, पकड़ के रोको भाग जाएगा, तो अभी आज का मिला के केवल लास्ट 21 डेज बाकी है, लास्ट 21 डेज, तो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया वो कम से कम लास्ट 21 डेज 21 दिन आज से मिला के कुक्ड को छोड़कर कम से कम रॉ पर आ जाएंगे, जिन्होंने रॉ किया है वो SFV पर आ जाएंगे। SFV में चार बातें हैं, क्लियर लिक्विड्स, पानी और नारियल पानी, दूसरा जूसेस वेजिटेबल जूस फ्रूट जूस, तीसरा स्मूदीज और चौथा सूप। वो एटलीस्ट इन 21 दिन के लिए अगर फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है और देह के भान से परे निकल जाना है और अपनी नींद को जीत लेना है, कितने भी बजे सो, चाहे 10 बजे 11 बजे, अपने आप 2-2.5 बजे आँख खुल जाती है, क्योंकि शरीर में जितना ज़्यादा भोजन उतनी नींद, भोजन कम नींद कम, फरिश्ता स्थिति अर्थात लाइट की स्थिति, और विदाउट लूजिंग वेट, विदाउट लूजिंग वेट, क्योंकि ये व्यक्ति करने जाता है वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि वो फोकस फूड पर रहता है। यहां फोकस फूड पर नहीं, अध्यात्म पर रखना है, मेरी पालना डिवाइन लाइट से हो रही है, मेरे एक एक सेल को न्यूट्रिशन मिल रहा है परमात्म शक्तियों से, निरंतर इन्हीं संकल्पों में रहना है कि मेरा शरीर, कल की ही मुरली में एक वाक्य था, कौन सा, कल की साकार मुरली, बहुत पावरफुल वाक्य था, कल की साकार मुरली, इसी के बारे में एक वाक्य था, नहीं वो नहीं, अशुद्ध भोजन, कल की मुरली में एक पॉइंट था, आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है, आत्मा के आधार पर शरीर, आत्मा के अतिरिक्त इस शरीर को चलाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं। फिर क्यों हो जाता है ऐसा कि जैसे ही भोजन से दूर करो कमजोरी आ जाती है, वजन कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, स्टार्वेशन होता है, डेथ हो जाती है, क्योंकि एडिक्शन हो गया है भोजन का, धीरे धीरे एकदम शॉक हो जाएगा अगर अचानक चेंज करोगे तो। इसलिए ये प्रक्रिया थी बहुत धीरे धीरे चेंज करने की। अब लास्ट 21 दिन बाकी है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया या किया 2 दिन और छोड़ दिया और हुआ ही नहीं, एटलीस्ट इन लास्ट 21 डेज, लास्ट 21 डेज, स्मूदीज सूप्स कुक्ड भी चलेगा, ये भी कहा था हमने, केवल डेयरी को आउट, और जो डेयरी रखते हैं चलो डेयरी भी अलाउ किया था, पर अभी लास्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने सिंसियरली अब तक सब किया है, उनके लिए जिन्होंने चबाया ही नहीं है पिछले कितने दिनों से, कितने दिनों के, 97 दिनों से, उनके लिए जिन्होंने सिंसियरली ये चारों चीजों को फॉलो किया है, केवल लिक्विड लिए है या सेमिस या जूसेस लिया है या स्मूदीज लिए और सूप लिए, उनके लिए लास्ट 21 डेज स्मूदीज और सूप आउट, केवल क्लियर लिक्विड्स, केवल जूस, जिन्होंने किया है केवल उनके लिए, जिन्होंने नहीं किया वो इस स्टेप पर नहीं आएंगे, ये आगे की स्टेप है, जिन्होंने सिंसियरली किया है केवल वो लोग, केवल वो, केवल नीचे के 2 आउट, ये केवल 2 पर आएंगे, या तो पानी नारियल पानी गन्ने का रस, या तो कोल्ड प्रेसेस संतरा मौसम्बी का जूस, या तो वेजिटेबल जूसेस लौकी खीरा जो भी जूसेस बनते हैं कोल्ड प्रेस, बट नो कुक्ड, रॉ लिक्विड, उसमें भी क्लियर लिक्विड विदाउट फाइबर। पर जिन्होंने किया है केवल और केवल वो लोग, केवल 21 दिन के लिए, और 21 दिन ये करते करते ऐसा अनुभव होगा कि शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा है, शरीर में लाइट ही लाइट है, केवल लाइट, और मेरी पालना मेरा पोषण किससे हो रहा है, आत्मा से, एक मेरा पोषण किससे हो रहा है, परमात्म शक्तियों से हो रहा है, तीसरा मेरा पोषण किससे हो रहा है, प्राण ऊर्जा से, जहां जा रहा हूं वहां प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, प्राणा, प्राणिक लिविंग, प्राणिक न्यूट्रिशन, ये फास्टिंग नहीं है, क्योंकि मैं तो खा रहा हूं पर शाकाहारी भोजन नहीं खा रहा हूं, कौन सा भोजन खा रहा हूं, निराकारी भोजन, मेरे सेल्स को लाइट चाहिए, केवल प्राण ऊर्जा चाहिए, बस लाइट ही भोजन है, तो मेरा शरीर किससे चल रहा है, शाकाहारी भोजन, फिजिकल भोजन, फिजिकल फूड, मटेरियल फूड से नहीं, नॉन कन्वेंशनल फूड से। थेरेसा न्यूमैन थी, 40 साल तक किस पर जी, एक टुकड़ा था ब्रेड का उस पर जीती थी, बस कॉन्सेक्रेटेड यूक्रिस्ट, वो कहती थी इतना काफी है मेरे लिए और किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना फेथ उसमें डाल दिया था, हमारे अंदर एक गहरा फेथ बैठा हुआ है कि अगर नहीं खाओगे तो मर जाओगे, ये सारी भट्टी इस फेथ पर आक्रमण है, ये विश्वास। जो व्यक्ति बीमार पड़ा है 80% कारण उसका भोजन है, और यदि ज्ञान की गहराई में उतरना है तो मन सूक्ष्म चाहिए, शरीर बहुत हल्का चाहिए। वो तभी होगा जब जिन्होंने ये किया है, केवल उनके लिए कह रहे, केवल शुद्ध रसाहार 21 डेज एब्सोल्यूट रसाहार, और वो भी जो रस पिएंगे चम्मच से और बहुत धीरे धीरे, चबा चबा के लो या कैसे भी लो, बाबा की याद में ये संकल्प के साथ कि इसमें परमात्मा शक्ति है, ये शुभी रस है, इतना पी रहा हूं। भीम को कितने हाथियों का बल मिल गया था? 10,000 हाथियों का बल इसमें मेरे मुझे मिल रहा है, इतनों सर ले रहा हूं, पर इससे ना मेरा वजन घटेगा, ना मेरी हेल्थ वैसी की वैसी रहेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी ये संकल्पों के साथ। नहीं तो डर कौन सा होता है? दो ही डर है, कमजोरी, वजन कम, और दुनिया पागल कर देती है, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, अरे कुछ खाओ खाओ खाओ, ऐसे पीछे पड़ते हैं, ऐसे पीछे पड़ते हैं कि बात मत पूछो। पर वो तब जब आपका वजन घटेगा, अगर वजन ही नहीं घटा तो नहीं पड़ेंगे। कर ये रहे परंतु वेट एज इट इज, ये होगा संकल्पों से। कैसे? मेरी शरीर का एक एक कोशिका को पोषण मिल रहा है। मधुबन में जा रहा हूं, मधुबन की प्राण ऊर्जा मुझे, कुटिया की, कुटिया का प्राण, हर एक जगह प्राण ऊर्जा है, सर्वव्यापक है वो प्राण ऊर्जा, उससे मेरे शरीर का पोषण हो रहा है। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, सारे प्रोटीन, सारे विटामिन एयर और सनलाइट से मुझे प्राप्त हो रहे हैं। दिन रात मन में एक ही संकल्प। ये फास्टिंग नहीं है, फास्टिंग में तो डिनाई करना पड़ता है, खाना नहीं पड़ता है, यहां तो हम खा रहे हैं, पर कौन सा भोजन खा रहे? ज्ञान का भोजन, प्यूरिटी का भोजन, प्यूरिटी के भोजन से मेरा शरीर चल रहा है, पवित्रता के भोजन से, ज्ञान के भोजन से, शक्तियों के भोजन से मेरा शरीर चल रहा है, और शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है। बुढ़ापा खत्म, बीमारियां खत्म, डेथ खत्म, तीनों से मैं मुक्त हूं। क्योंकि ये तीनों चीजों किससे आती है? भोजन से। डर करप्ट कर देता है सिस्टम को। जितना इस शरीर में लाइट, क्योंकि लिक्विड ही लिक्विड बह रहा है, उसको कोई डाइजेशन का काम ही नहीं, डाइजेस्ट करते ही डाइजेशन मेक्स यू अनकॉन्शियस, कहीं ना कहीं बेहोशी आ जाती है। यहां योगी का जो शरीर है वो डाइजेशन का शरीर नहीं है, योगी का शरीर लाइट का शरीर है। लाइट पियो, लाइट खाओ। कल भी हमने एक ड्रिल देखी थी, बाबा किस अवस्था में भोजन कर रहे थे? लाइट माइट की अवस्था में। वो तभी होगा जब भोजन हल्का होगा, तो वो जो पोहा और ये सब जो खा रहे आज से आउट, जिन्होंने इतना दिनों से एसएफपी किया है, वो जो स्मूदी और जो सूप गरम गरम बना बना के पी रहे हैं, कितना मजा आता है। अब मसाला डाल डाल के ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि इसको इतनी माया, ये भी एक माया है, पर और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो एटलीस्ट एसएफई तो करे, और जिन्होंने को एसएफई भी नहीं करना है वो कम से कम रॉ करो, रॉ भी नहीं करना है तो कम से कम 50% रॉ करो। चलो सुबह जूसेस ले लो, शाम को जूसेस ले लो, दोपहर का एक फुल भोजन कर लो, कुक्ड वाला, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ। परंतु हायर अवस्था में जाते जाते ही जाते जाते शरीर ऐसा बन जाता है कि जो सेंसेस है इतने हाइटेंड हो जाते हैं कि बहुत सूक्ष्म तरंगे कैच करते हैं हम, क्योंकि भोजन की अपवित्रता उसमें है ही नहीं, शरीर में केवल रसाहार रस गूंज जल रहा है। तो ज्ञान की पकड़, बाबा के प्रकंपन, परमधाम की अवस्था, व्यक्त स्थिति, आवाज में जाओ, और आवाज से मौन में आने के लिए बहुत फास्ट एंट्री होती है, भोजन खाते खाते एक बहुत मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल। आप बहुत काम में हो, सेवा में हो, जैसे एकांत में चले गए संसार आउट, क्योंकि शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा है। सबसे ज्यादा ऊर्जा काम विकार से नष्ट होती है, रसाहार में काम विकार असंभव है, चाहे भी तो व्यक्ति संकल्प नहीं आ सकते उसको, क्योंकि उसको अपनी देह से ही डिटैचमेंट है। किसी और को देह को देखना, एप्रिशिएट करना, हाथ लगाना, इससे परे निकल जाता है योगी, इच्छा ही नहीं होती है कुछ। तो ठीक है, लास्ट 21 डेज भट्टी के, तो हमारी भट्टी अभी 21 डेज की बाकी है, जिसमें 69 से हम 80 तक अगले एक हफ्ते तक लेने वाले हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे। बट ये मुख्य मंत्र है, ये बीज है स्वास्थ्य का। अगर हेल्दी होना है, बूढ़ा नहीं होना है। महात्मा बीमार क्यों है? क्योंकि खाते रहते दिन रात। अच्छा, सेवाओं का विस्तार। दशो दिशाओं में जाए, दल बादल से छा जाए, उमड़ घुमड़ कर हर धरती पर नंदन वन सा लहराए। ओम शांति।
दल बादल से छा जाए, उमड़ घुमड़ कर हर धरती को नंदन वन सा लहराए। दसो दिशाओं में जाए, दल बादल से छा जाए, उमड़ घुमड़ कर हर धरती को नंदन वन सा लहराए। दसो दिशाओं में जाए, मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे। दानवता की बेल विशेली कहीं नहीं छाने देंगे। जहाँ कहीं लू झुलसाती, जहाँ कहीं लू झुलसाती, अंगुतरी मझिम बरसाए, नंदन वन सा लहराए। दसो दिशाओं में जाए, सुकोमल खेती पर हम बिजली नहीं गिराते हैं, किंतु अड़ीले बालू टीले वर्षा में ढह जाते हैं। भौसा हमारा काम नहीं, भौसा हमारा काम नहीं, अविरल जीवन सरसाए, नंदन वन सा लहराए। दसो दिशाओं में जाए, मानव जीवन की स्वतंत्रता नष्ट नहीं होने पाए। यंत्र व्यवस्था हृदयहीन में स्वत्व नहीं खोने पाए। जीवन स्तर का अर्थन हम, जीवन स्तर का अर्थन हम, गडगर में भरमाए, नंदन वन सा लहराए। दसो दिशाओं में जाए।